कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सो हम अभी श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 25, शीर्षक है श्री भगवान अनंत की महिमा, श्लोक क्रमांक 6। ये श्लोक गद्य रूप में होने के कारण हम उसे सिर्फ पढ़ेंगे, उच्चारण नहीं करेंगे। स एव भगवान अनंतः अनंत गुण अर्णव आदि देव उपसंहृत अमर्ष रोष वेग लोकानाम स्वस्तये आस्ते। इसका अर्थ इस प्रकार से है, श्री भगवान संकर्षण अनंत दिव्य गुणों के सागर है, जिससे वे अनंत देव कहलाते हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न है। इस भौतिक जगत के समस्त जीवों के कल्याण हेतु वे अपने क्रोध तथा अपनी असहनशीलता को रोके हुए अपने धाम में निवास करते हैं। तात्पर्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य अनंत देव का मूल कार्य इस भौतिक सृष्टि का विलय करना है, किंतु वे अपने रोष तथा असहनशीलता को रोके रहते हैं। इस भौतिक जगत की सृष्टि बद्ध जीवात्माओं को श्री भगवान के धाम वापस जाने के लिए एक और अवसर प्रदान करने के लिए की जाती है, किंतु अधिकांश जीव इस सुअवसर का लाभ नहीं उठाते। सृष्टि के उपरांत वे अपनी पुरानी अप्रवृत्ति के अनुसार फिर से भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं। बद्ध जीव की इन क्रियाओं से अनंत देव क्रुद्ध हो उठते हैं और संपूर्ण भौतिक जगत को विनष्ट कर देना चाहते हैं, किंतु श्री भगवान होने के कारण वे हम पर दयालु है और अपने रोष तथा अमर्ष को रोक लेते हैं। कभी कभी ही वे अपना रोष प्रकट करते हैं और भौतिक जगत का विनाश कर देते हैं। ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामय्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सो आज हम श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद को पढ़ रहे हैं। यहाँ पे भगवान श्री अनंत देव का महिमा का वर्णन किया गया है। अभी तक हमने श्रीमद् भागवत के अब तक के प्रसंग में देखा कि परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी संपूर्ण ब्रह्मांड की संरचना के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। उसमें से अब तक उन्होंने ऊपरी जो ग्रह लोक है और साथ ही साथ भूमंडल के बारे में उसके बारे में चर्चा की। वो चर्चा होने के पश्चात उन्होंने भूमंडल के नीचे जो जो अधलोक है उसका भी वर्णन किया। उन सबका वर्णन करने के पश्चात अभी वे पूरे भूमंडल के नीचे या पाताल लोक के नीचे क्या अवस्था है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो पूरे ब्रह्मांड की संरचना में 14 भुवन लोक है, उसमें से भूमंडल जो है वो बीच में है जहां पर हमारा निवास है, हम भूमंडल पे रहते हैं। भूमंडल के नीचे अतल वितल सूतल तलातल रसातल महातल एंड पातल ऐसे 7 लोक है। अब ये पाताल लोक के नीचे क्या है उसका वर्णन किया जा रहा है। तो पाताल लोक में यहां पर वर्णन है कि टोटल 240,000 मील नीचे पाताल लोक के 240,000 मील नीचे ये भगवान अनंत देव निवास करते हैं, उनका निवास स्थान है वहां पर। अब ये अनंत देव कौन है? अनंत देव साक्षात भगवान है, भगवान के ही विस्तारित रूप है। अनंत देव और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो अनंत देव का प्राकट्य क्यों होता है, किस लिए होता है, इसका वर्णन चैतन्य शिक्षामृत में लिखा गया है। चैतन्य टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, उसमें चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को जब शिक्षा दे रहे थे, ज्ञान प्रदान कर रहे थे, तो उसमें अलग अलग अवतारों का वो वर्णन करते हैं। तो भगवान के अनंत अवतार है, असंख्य अवतार है, लेकिन ये असंख्य अवतार को 6 भाग में विभाजित किया गया है। पहला है पुरुषावतार, बाद में लीला अवतार, बाद में मन्वंतर अवतार, युगा अवतार, गुणावतार और शक्त्यावेश अवतार। तो जब शक्त्यावेश अवतार की बात आती है तो इस शक्त्यावेश अवतार में प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि शक्त्यावेश अवतार में भी 2 प्रकार है, एक प्रत्यक्ष आवेश अवतार और एक अप्रत्यक्ष आवेश अवतार। शक्त्यावेश अवतार का अर्थ होता है कि किसी एक जीव को भगवान विशिष्ट कार्य या शक्ति प्रदान करते हैं जिसके द्वारा वह जीव एक भगवान का एक कार्य सिद्ध करने के लिए प्रेरित होता है और उसको अच्छी तरह से निभा सकता है। लेकिन कभी कभी जब कोई जीव उपस्थित न हो उस कार्य को करने के लिए या योग्य पात्र न हो तो स्वयं भगवान ही उस कार्य को निभाने के लिए प्रकट होते हैं। जैसे सृष्टि की निर्मिति के लिए, सृष्टि का निर्माण करने के लिए ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। ये ब्रह्मा जी हम जैसे ही जीव होते हैं। यदि हमारे पास भी उत्तम योग्यता हो तो आगे चल के भगवान हमें ब्रह्मा जी का पद प्रदान करके सृष्टि का निर्माण करने का अवसर प्रदान करते हैं। लेकिन कभी कभी अगर जीव के पास उतनी योग्यता न हो, वैसा जीव उपलब्ध न हो, तो स्वयं भगवान ही ब्रह्मा का रोल निभाते हैं। तो ऐसे समय पर उस अवतार को प्रत्यक्ष आवेश अवतार कहा जाता है। और जब कोई जीव भगवान का शक्ति प्राप्त कर लेता है तो उसे अप्रत्यक्ष आवेश अवतार कहते हैं। तो प्रत्यक्ष मतलब जहां पे स्वयं भगवान एक विशिष्ट कार्य करने के लिए प्रकट होते हैं। तो उसमें वर्णन आया है कि भगवान अनंत शेष जो है ये भगवान के प्रत्यक्ष आवेश अवतार है, जहां पर भगवान स्वयं ही एक स्पेसिफिक रोल निभाते हैं और उनका कार्य केवल उतना ही सीमित होता है। यहां पर भगवान अनंत शेष या अनंत अवतार का वर्णन बताया कि वो ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर धारण किए हैं, उनका वही कार्य है, केवल उतना ही कार्य करने के लिए उनका प्राकट्य हुआ है, वे उसके अलावा और अन्य कोई कार्य नहीं करते। तो ये उस कैटेगरी में आता है जहां पर प्रत्यक्ष भगवान एक विशिष्ट कार्य करने के लिए प्रकट होते हैं। आपने कभी देखा होगा भगवान विष्णु शेष शैया पर सोए हुए हैं। तो भगवान शेष जो है, अनंत शेष जो है, वो केवल भगवान की वो शैया के रूप में सेवा करते हैं। स्वयं भगवान ही अनंत बन जाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो ये एक विशिष्ट उनका सेवा भाव है। महाभारत में भगवान अनंत शेष के अवतार का वर्णन आया है, जहां पर कश्यप ऋषि के दो पत्नियां होती है, एक होती है कद्रु और दूसरी होती है विनता। कद्रु जो है ये सभी सर्प के माता है और विनता जो है वो गरुड़ की माता है। तो एक बार दोनों में बहुत अनबन हो जाती है, एक दूसरे से ईर्ष्या करती है, क्योंकि एक देखा जाए तो सगी बहनें हैं लेकिन सौतन है दोनों भी एक दूसरे की, तो दोनों में ईर्ष्या बहुत होती है। और कद्रु का स्वभाव एक प्रकार से ईर्ष्या वृत्ति से भरा होने के कारण उनके जो पुत्र होते हैं, जो सभी सर्प योनियां हैं, वो सब कद्रु से उत्पन्न हुए हैं, तो उनके अंदर भी ये ईर्ष्या वृत्ति अत्यंत प्रभावी होती है। लेकिन कद्रु का ही बेटा है भगवान अनंत शेष, उनके ही द्वारा उनका प्राकट्य हुआ। जब वो देखते हैं भगवान अनंत शेष कि ये सारे मेरे जो अन्य भाई है सर्प योनि में उत्पन्न हुए, ये इतने ईर्ष्यालु है, इतने द्वेष करने वाले हैं, तो उनको वो सहन नहीं होता। महाभारत में वर्णन है कि अपने भाइयों के स्वभाव को परेशान होकर वह पाताल लोक की तरफ निकल पड़ते हैं, उनसे दूर रहना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि अपने भाइयों के साथ रहे। तो जब वे पाताल लोक की तरफ जाते हैं तो वहां पर उनकी मुलाकात ब्रह्मा जी से होती है। ब्रह्मा जी को सादर प्रणाम करते और प्रणाम करके वो अपना हेतु बताते कि मैं अपने भाइयों के साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि उनका स्वभाव, उनकी वृत्ति मेरे लिए हानिकारक है। तो ब्रह्मा जी फिर उनको अनुरोध करते हैं कि आप अगर ये भूमंडल को अपने मस्तक पर धारण करने का सेवा करें तो बहुत अच्छा होगा, जिससे सारी सृष्टि का संतुलन बना रहेगा, और ये केवल आप ही कर सकते हैं। इससे आपका कार्य भी साध्य हो जाएगा और आपको आपके भाइयों के साथ रहना भी नहीं पड़ेगा, तो दोनों कार्य हो जाएंगे। तो भगवान अनंत शेष जो है फिर वो पाताल लोक के नीचे जाकर सारी धरणी मंडल को या भूमंडल को अपने मस्तक पर धारण कर लेते हैं। श्रीमद् भागवत के इस स्कंद में बताया है कि जब भगवान इस धरणी मंडल को अपने मस्तक पर धारण करते हैं तो जैसे एक राई का दाना होता है वैसा उनको अनुभव होता है। अभी कभी कभी यहां पर पढ़ते हुए हमें दिखता है कि भूमंडल कैसे राई का दाना जैसा है। राई के दाने जैसा है इसका मतलब ये नहीं कि राई के दाने के साइज जैसा है, उसका वजन, उसका भार जो है राई के दाने के बराबर अनुभव होता है, अन्यथा पूरा भूमंडल तो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। अगर आप पंचम स्कंद पढ़ेंगे तो भूमंडल के साइज का वर्णन किया गया है, जहां पर बताया कि भूमंडल जो है पूरे ब्रह्मांड को एक छोर से दूसरे छोर तक व्याप्त किया हुआ है और उसके नीचे भगवान अनंत शेष उनको धारण किए हुए हैं। ये ऐसा ही है किसी उंगली पर आपने एक प्लेट रख दी हो, उंगली पे ऐसी प्लेट रख दी हो तो कैसे दिखेगा, तो वैसे ही भगवान अनंत शेष अपने मस्तक पे वो प्लेट धारण की हुई है भूमंडल का, तो वैसा है ये। तो जब यहां पर जब उदाहरण दिया जाता है कि मस्तक पर राई के दाने के बराबर उनको महसूस होता है, तो कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मांड जो है वो राई के दाने जैसा है उनके लिए। ऐसा नहीं है, ब्रह्मांड मतलब वो भूमंडल जो है उसका वजन राई के दाने के बराबर है उनके लिए। इस प्रकार से उसका अर्थ समझा जा सकता है। यहां पर अभी हम देख रहे हैं श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि अनंत देव जो प्रकट होते हैं उनका मूल कार्य क्या है, उनका पर्पस क्या है प्रकट होने का। अनंत देव को तामसी कहा गया है। तामसी का अर्थ होता है जो तमोगुण पर अपना वर्चस्व निभाए या तमोगुण को प्रभाव में डाले। इसका अर्थ यह होता है कि उनका कार्य जो है इस सृष्टि का विनाश करना है। जब भी कभी प्रलय की आवश्यकता होती है तो भगवान अनंत शेष अपने असंख्य मुखों से अग्नि प्रज्वलित करते हैं और पूरे भूमंडल को जला देते हैं। ये आमतौर पर तब होता है, ये तब का प्रलय है जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी अपने दिन पूरा कंप्लीट कर लेते हैं और जब वे सो जाते हैं तो उस समय अनंत शेष जो है पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर देते हैं। उस समय वो प्रलय होता है। तो यहां पर बताया कि अनंत देव जो है उनका मुख्य कार्य जो है वो सृष्टि का विलय करना है, प्रलय करवाना। लेकिन वो प्रलय क्यों करवाते हैं? एक तो हमेशा की तरह रेगुलर प्रलय होता है, लेकिन कभी कभी यहां पे बताया है कि जब अनंत देव बहुत क्रुद्ध हो जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, तो उस क्रोध में आकर वे सृष्टि का प्रलय भी कर देते हैं। लेकिन यहां पर एक और चीज बताया है कि यद्यपि उनका स्वभाव ऐसा है लेकिन वे अपने क्रोध को कंट्रोल करते हैं, अपनी असहनशीलता को कंट्रोल करते हैं और सृष्टि को विनाश से बचा लेते हैं। यहां पर यह भी बताया है कि भगवान शिव का प्राकट्य अनंत शेष से होता है और अनंत शेष ही संकर्षण भगवान है। संकर्षण भगवान भगवान शिव के आराध्य है। आराध्य होने के नाते जब प्रलय करने की बात आती है तो अनंत शेष से रुद्र के 11 रूप जिसे भगवान शिव के 11 रूप जिसे 11 रुद्र के रूप में जाना जाता है वे प्रकट होते हैं और ये सब मिलाकर पूरे ब्रह्मांड को पूरे सृष्टि का विनाश कर देते हैं। लेकिन भगवान विनाश क्यों करते हैं? यहां पे प्रभुपाद बताते हैं कि बद्ध जीव की इन क्रियाओं से अनंत देव क्रुद्ध हो उठते हैं और संपूर्ण भौतिक जगत को विनष्ट कर देना चाहते हैं। तो कौन सी क्रियाओं को देखकर भगवान को दुख होता है या उनको क्रोध आता है? तो यहां पर वो भी बताया है, इस भौतिक जगत की सृष्टि बद्ध जीवात्माओं को श्री भगवान के धाम वापस जाने के लिए एक अवसर के रूप में प्रदान की गई है। तो इस जगत का निर्माण क्यों किया भगवान ने? कि एक अवसर प्राप्त हो। इसको एक अच्छी तरह से समझा जाते हैं कि कभी कभी लोग पूछते हैं कि भगवान ने यह सृष्टि की निर्मिति क्यों की, अगर नहीं करते तो कितना अच्छा होता। भगवान ने यह सब निर्माण किया इसलिए हमको इस जगत में दुख भोगना पड़ रहा है। लेकिन हमारे आचार्य बहुत अच्छी तरह से बता दे कि इस सृष्टि के निर्माता भगवान न होकर हम स्वयं हैं। तो कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है कि हमने कैसे निर्माण किया, भगवान ने सब कुछ निर्माण किया। लेकिन भगवान ने निर्माण किया है लेकिन किसके लिए, क्यों निर्माण किया? हमारे लिए। श्रील प्रभुपाद बहुत एक सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे जब माँ घर के अंदर किचन के अंदर रसोई बना रही होती है और जब उसका छोटा बच्चा परेशान करता है कि मैं भी कुकिंग करना चाहती हूँ, तो माँ क्या करती है, उसके लिए एक छोटा सा खिलौने वाला सेट लाकर दे देती है और कहती है कि खेलो इसके साथ। मराठी में कहते हैं भातुकलीचे खेल। तो खिलौने का सेट लाकर दे देती है और कहती है कि छोटा सा ये किचन सेट है, ये तुम्हारा किचन सेट है, इस पे तुम खाना पकाओ। तो बच्चा उसमें बिजी हो जाता है लेकिन उस पे खेलते खेलते बाद में भूख तो लगेगी। लेकिन उस खेलने भूख लगी है तो उस खिलौने से तो उसका पेट नहीं भरने वाला। तो वापस वो अपने माँ के पास आती है और कहती है कि मुझे भूख लगी है। उसी प्रकार से कभी कभी हम जैसे जो जीव है, जो भगवान के आध्यात्मिक जगत में हमने भी कुछ गलतियों के कारण, अभी आप कहेंगे कौन सी गलती की थी हमने, तो ये किसी को नहीं पता कि कौन सी गलती की, बस इतना पता है कि गलती हो गई है और गलती होने के कारण हम यहाँ पर आए हैं। और भगवान ने इस सृष्टि को निर्माण इसलिए किया है दो कारणों के लिए, एक तो हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए और दूसरा एक संधि प्रदान करने के लिए ताकि हम इस जगत से निकल कर वापस भगवत धाम जा सके। तो ये जो जगत है एक प्रकार से बंदीशाला के जैसे है, जेल के समान है। जेल का भी उद्देश्य होता है, दो उद्देश्य होते हैं, एक दंड देना और दूसरा सुधार करना। दंड इसलिए ताकि वापस गलती ना करे या अपनी गलती का पश्चाताप हो, और सुधारना इसलिए कि जैसे सरकार अपेक्षा करती है जिस नियमों के साथ समाज में रहे, अगर वह व्यक्ति समाज में सरकारी नियम का पालन करता है तब उसे छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार से यही सुधारणा होती है। हमारे जनरली जेल में क्या देखा जाता है, सुधारणा हुई है या नहीं हुई है पता नहीं, बस इतना टाइम पीरियड के लिए जेल दिया जाता है, दंड हो के छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर से केवल एक मर्यादित टाइम पीरियड रहे तो पता कैसे चलेगा कि वापस वो बाहर निकलेगा तो क्राइम नहीं करेगा, क्राइम करता है वापस। तो ये जो सृष्टि है भगवान ने इस प्रकार से बनाई है कि यहाँ पे कोई टाइम पीरियड नहीं है, जब तक वो सुधरता नहीं है तब तक उसको इसी जगत में रहना पड़ेगा। ये इस भौतिक जगत का विशेषता है। तो सुधारना क्या है, अपने अंदर भगवत धाम जाने की योग्यता प्राप्त करना। भगवत धाम में जैसा वातावरण है, भगवत धाम में जैसे लोग रहते हैं, उसी के अनुसार अगर हम यहाँ पर प्रैक्टिस करें उसी लाइफस्टाइल को लेकर, तो फिर हम वापस अपने धाम जाने के पात्र बन जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि हमको यहाँ से किसी विदेश देश में जाना है, किसी फॉरेन कंट्री में जाना है, तो फिर अपेक्षा की जाती है कि वहाँ जाने से पहले वहाँ के तौर तरीके सीख लो, ऐसा ना हो कि वहाँ पे जाओ तो कल्चर शॉक लग जाए आपको। तो वहाँ के क्या तौर तरीके हैं, लोगों से कैसे बात करना है, क्या शिष्टाचार का पालन करना है, ये पहले से आपको सीखना पड़ता है। और जब आप सीख जाते हो फिर आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में पास होने के बाद फिर आपको भेजा जाता है। उसी प्रकार से भौतिक जगत जो है आपको पहले सीखना पड़ेगा कि वैकुंठ धाम आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। एक बार ट्रेनिंग हो जाए, सीख जाए, फिर माया देवी इंटरव्यू लेती है, परीक्षा लेती है, और फिर बाद में हम भगवत धाम जाने के लिए पात्र बनते हैं। लेकिन कई बार देखा जाता है कि लोग सुधरना ही नहीं चाहते, वो जेल भी पड़े रहना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि यही जगत अच्छा है, बहुत अच्छा है, यहाँ का मैं बॉस हूँ, यहाँ पे मैं डॉन बन गया हूँ, पूरे जेल में मेरा ही चलता है। तो फिर ऐसे समय पर जो जेल का सुपरिटेंडेंट होता है वो उसको बहुत फटके लगाता है। तो एक प्रकार से भगवान शिव, दुर्गा देवी या भगवान और इन दो शिव और दुर्गा देवी जो है वे स्वयं भगवान शंकरशन के मार्गदर्शन में ये सब कार्य करते हैं। तो ऐसे बद्ध जीव को वो बहुत अच्छी तरह से सबक सिखाते हैं। लेकिन कभी कभी परिस्थिति हाथ से परे हो जाती है, निकल जाती है, तो भगवान पूरी सृष्टि का विध्वंस करते हैं, फिर से नया सृजन करते हैं। तो ये कार्य करने के लिए अनंत शेष को नियुक्त किया गया है ताकि वो सृष्टि का विध्वंस करे। लेकिन ये कब करते हैं, जब परिस्थिति संभालने जैसी नहीं है। आप कहेंगे कि फिर परिस्थिति संभालने जैसी भगवान को भी संभालने जैसी नहीं है, क्या भगवान को कुछ ऐसी चीज है जो भगवान संभाल नहीं सकते? ऑफकोर्स संभाल सकते हैं भगवान। उदाहरण फिर से एक लेते इसको समझने के लिए, जैसे आप किसी बहुत पुराने मकान को बार 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 रिपेयर करते हैं, तो कई बार रिपेयर किया आपने, लेकिन आप देख रहे हैं कि बार बार जो है रिपेयर करने के बाद भी उसको वापस मेंटेनेंस करना पड़ता है, कई बार मेंटेनेंस करना पड़ रहा है, तो अंत में आप सोचते हैं कि इससे अच्छा है इसको पूरा तोड़ देते हैं और एक नया सेटअप करते हैं जिससे जो इसके अंदर कमियां हैं उसको वापस ठीक किया जा सके। तो ये जो सृष्टि है, भगवान इस सृष्टि में कई बार मेंटेनेंस जॉब करने के लिए आते हैं विभिन्न लीला अवतारों के रूप में, कई बार मेंटेनेंस करते हैं, कई बार धर्म की पुनर्स्थापना भी करते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि कितनी बार भी मेंटेनेंस करो ये बिल्डिंग फिर से खराब होती जा रही है, तो भगवान फिर सोचते हैं कि बेटर है इसको विध्वंस कर दो और नया सृजन करो। इसी को हम प्रलय कहते हैं, ताकि वापस सृष्टि का निर्माण किया जा सके और ताकि जो लोग हैं, जनता है, उनको एक और अवसर प्रदान किया जा सकते। तो इसीलिए हमारे वैदिक परंपरा में काल चक्र जो है वो बार बार बदलते रहता है। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कली, और कली के बाद फिर से सतयुग आता है। ये सतयुग जो है ये कली के पूरे विध्वंस के बाद आता है, ताकि उन्हें फिर से एक सुविधा मिल सके, फिर से चांस मिल सके, ताकि वे अपना जो अपना आध्यात्मिक कार्य है वापस शुरू कर सके अच्छी तरह से। तो कभी कभी भक्तों के भी जीवन में इसी प्रकार की अवस्था आती है। अभी तक तो हमने चर्चा की एक सामान्य बद्ध जीव को परेशानी क्यों भुगतनी पड़ती है या विध्वंस क्यों होता है। तो इसके लिए हम भगवान की भक्ति करना चाहते ताकि हम लोग वापस इस जगत से निकल के बाहर जा सके। लेकिन भक्तों के भी जीवन में ये चक्र चलता रहता है। भगवान भक्तों के भी जीवन में अनंत शेष भी कार्य करते हैं। भक्तों के जीवन में कैसे, वहां पर भी वो प्रलय करते हैं, वहां पर भी वो विध्वंस करते हैं। कभी कभी भक्तों के जीवन में भगवान अनंत कैसे प्रलय ला सकते हैं। तो जब भगवान देखते हैं कि ये बद्ध जीव को भक्ति का सानिध्य प्राप्त, भक्ति का लाभ मिला है, भक्तों का सानिध्य प्राप्त हुआ है, लेकिन फिर भी भक्ति को गंभीरता से नहीं ले रहा है, फिर भी भक्ति को टाल रहा है, कैजुअली ले रहा है, तो भगवान उसके जीवन में प्रलय लेकर आते हैं। ऐसा प्रलय लेकर आते हैं जिससे वो भक्ति को गंभीरता से लेना चालू करे, क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि हम इस भौतिक जगत में रहे। इसी अध्याय के पिछले श्लोक में प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान जो है वो हमें अपने धाम में लाने के लिए हमसे भी ज्यादा आतुर है। वो चाहते हैं कि हम यहां पर नहीं रहे, लेकिन हम ही यहां पर बने रहना चाहते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम है। तो हम यहां पर बने रहना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये किस पर डिपेंड करता है, हम कितना गंभीर है, कितना सीरियस है। श्रील प्रभुपाद एक और सुंदर उदाहरण देते हो, उनके किताबों में कई सारे आपको एनालॉजीज मिलेंगे। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है और वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसको दो चीजें करने को बोलते हैं। अगर ठीक होना है तो दो चीजें करनी पड़ेगी, एक आपको दवाई लेनी है और दूसरा आपको परहेज पालन करना है। परहेज मतलब डिसिप्लिन, रेगुलेशन। अगर पेशेंट केवल दवाई ले और डिसिप्लिन फॉलो ना करे, रूल्स रेगुलेशन फॉलो ना करे, मन में जब आएगा तब दवाई लेगा, खाने के पहले खाने के बाद ऐसा कोई नियम पालन ही नहीं करेगा, तो दवाई का इफेक्ट पड़ेगा जरूर, लेकिन उसको काम करने में बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हुए परहेज नियमों का पालन कर अगर वह दवाई या डॉक्टर ने जैसी बताई है वैसी अगर लेगा तो उसका इफेक्ट बहुत जल्दी होता है और वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टरों को भी पता है कि आमतौर पर पेशेंट ऐसा करते नहीं, ऐसा न करने के कारण पेशेंट बार बार डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर भी परेशान होता है, कितनी बार इसको समझाने का, बार बार क्यों आता है, एक बार में ही पेशेंट ठीक हो सकता है, केवल उसको ठीक से फॉलो करना है। अगर वो ठीक से फॉलो करना चालू कर दे तो डॉक्टर जो है किसी और पेशेंट को भी देख लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस वजह से समाज में कई बार भक्ति करने के बावजूद भी, भक्तों के सानिध्य में रहने के बावजूद भी, कभी कभी भक्तों को तकलीफें होती है। वो तकलीफें इसीलिए होती है। एक और उदाहरण मिलता है कि कभी कभी भक्त जो है शुरू शुरू में भक्ति में बहुत उत्साह रहता है, लेकिन जैसे जैसे भक्ति करना प्रारंभ करते हैं, कुछ साल गुजर जाते हैं, तो उत्साह कहीं तो शिथिल हो जाता है, फिर भगवान एक किक मारते हैं और फिर ठीक चालू हो जाते हैं वापस। तो वो किक कौन सी होती है, वो क्यों मारनी पड़ती है, उसका भी वर्णन है कि भक्त जो है जैसे छोटा बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो बा 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 माँ ऐसा कुछ तो बोलता है, तो माता पिता बहुत खुश होते हैं। कभी कभी वो रिकॉर्डिंग करके रखते बच्चों का ये सब बर्ताव। ऐसे तोतली जबान में बोलने से माता पिता को बहुत आनंद आता है और रिकॉर्ड करके रखते हैं। फिर और कुछ साल गुजर जाने के बाद जब उसकी शादी का समय आता है और जब लड़की का पिताजी लड़के से पूछता है कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो लड़का बोलता है माँ माँ बा 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 ऐसा करता है, तो क्या अभी वो खुश होगा? नहीं होगा। बचपन में वो सब ठीक था, लेकिन अभी 25 साल गुजर गए हैं, 25 साल के बाद भी अगर ताता बा माँ ऐसा करना चालू करेगा, तोतली जबान में बात करेगा, तो कोई खुश नहीं होगा। इसलिए जब हम भक्ति में होते हैं, नए नए होते हैं, या भक्ति की नई नई शुरुआत करते हैं, तो कई सारे भक्त लोग हमें बहुत प्रेरित करते हैं, उत्साह दिलाते हैं, भक्ति में हमारा ख्याल रखते हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, कई साल गुजर जाते हैं भक्ति में, तो अपेक्षा करते हैं कि आप उम्र के साथ साथ भक्ति में आपकी मैच्योरिटी बढ़े। लेकिन अगर वो मैच्योरिटी नहीं बढ़ेगी भक्ति में, तो फिर आपके उसी हरकतों से जो शुरू शुरू में आपको लोग उत्साह से बोलते, अरे वाह एक माला करते हो, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छी बात है अच्छी बात है, 16 माला जब होते, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन यही चीज अगर आगे चलते ऐसी प्रॉब्लम दी, तो 25 साल के बाद भी आप 2 माला पे अटके पड़े, तो कोई आपको वेरी गुड नहीं बोलेगा। उसी प्रकार से भगवान अनंत शेष, या भगवान के जो प्रतिनिधि है, गुरुजन है, हमारे वरिष्ठ वैष्णवगण है, जब वे देखते हैं कि ये भक्त वहीं पर अटका पड़ा है, तो उनको बहुत दुख होता है, कभी कभी क्रोध आता है, कब तक यहां पर पड़ा रहेगा। और भक्त है कि अपने कंफर्ट जोन में फंसा रहता है, कभी कभी कहता है प्रभु जी जितना मुझको होता है उतना मैं करूंगा, इससे ज्यादा नहीं होता मुझसे, मैं इतना नहीं कर सकता। तो फिर क्या होगा? कभी कभी भक्तों को चिंता होती है, अरे ये तो बाहर निकलना ही नहीं चाहता, तो फिर भगवान हाथ में छड़ी लेते हैं, कभी कभी भक्त भी छड़ी लेते हैं हाथ में, भगवान के प्रतिनिधि होने के कारण भक्त भी हाथ में छड़ी लेते हैं और उसको फटके लगाते हैं अच्छी तरह से। फिर भक्त को लगता है अरे ये तो बहुत सीनियर डिवोटी है, ये मेरे साथ ऐसे क्यों बर्ताव कर रहा है, मेरे साथ ऐसे क्यों इसका बिहेवियर ऐसा है, पहले तो कितना अच्छे से बात करते थे, पहले तो मुझे स्वीट राइस खिलाते थे, पहले तो मुझे महाप्रसाद देते थे, अभी बोलना ही बंद कर दिया, अभी तो बात ही नहीं करते मुझसे। तो ये उनका क्रोध जो है वो स्वाभाविक है, ये सोचना कि ऐसा क्रोधित करना अच्छा नहीं है, आप तो प्रभु जी है, आप तो बड़े भक्त हैं, आप ऐसा कैसे बर्ताव कर सकते हैं। तो ये जो विरोधाभासी चीजें हैं वो हमें आश्चर्य नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें अच्छा लगना चाहिए कि हाँ भक्त ऐसा कर रहे हैं, वो मेरे भलाई के लिए है। क्योंकि यहां पर बताया है कि समस्त जीवों के कल्याण हेतु वे अपने क्रोध तथा असहनशीलता को रोके रहते हैं। तो कोई सोचेगा भगवान तो सहनशील होते हैं, भगवान क्रोध नहीं कर सकते, लेकिन यहां पे बताते हैं कि भगवान क्रोध करते हैं, वे असहनशील भी है, तो आपको विरोधाभास लगेगा, ऐसे कैसे? कभी कभी लोग कहते हैं अरे तुम भक्त हो ना, तुम क्रोधित क्यों होते हो, क्यों क्रोध करते हो, भक्त को क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, भक्त क्रोध करते हैं इसलिए नहीं कि उनकी उनकी इंद्रिय तृप्ति में आप बाधा है, वो क्रोध इसलिए करते हैं ताकि आप प्रगति कर सके, इसलिए वो क्रोधित होते हैं। तो यहां पर भी भगवान क्रोधित होते हैं जब लिखा गया है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि उनका क्रोध हमारे जैसा है। कभी कभी माता पिता को भी बच्चे के प्रति क्रोध करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता बच्चे से द्वेष करते हैं, उनका क्रोध जो है वो बच्चे की भलाई के लिए होता है। उसी प्रकार से भगवान भी जब क्रोध करते हैं तो जीवों की भलाई के लिए होता है। तो जब हम सुनते प्रलय कर दिया भगवान ने, सब नष्ट कर दिया भगवान ने, तो भगवान का एक अलग ही रूप दिखाई लगता है, हमको लगता है कि ऐसे कैसे भगवान हो सकते हैं, सब विध्वंस करते जा रहे हैं, तो ऐसा रूप हमें पसंद नहीं है। उसी प्रकार से हमें भी भक्तों का रूप कौन सा पसंद है? प्रेम से बात करने वाला, बार बार पूछने वाला, वो रूप हमें पसंद है। जब भक्त क्रोधित हो जाते हैं तो रूप पसंद नहीं आता हमको, क्योंकि हमारा स्वभाव ही वैसा नहीं है, हमें सब कुछ आसान चाहिए। तो यहां पर श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अधिकांश जीव इस सुअवसर का लाभ नहीं उठाते, सृष्टि के उपरांत भी अपनी पुरानी प्रवृत्ति के अनुसार फिर से भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं। तो भक्ति में आने के बाद भी कभी कभी भक्त अपना पिछली प्रवृत्ति बना के रखते हैं। जैसे मुझे याद है, एक भक्त नया नया भक्ति में आया था और हमारे साथ ही बेस में रहा करता था। तो जब वो कॉलेज में रहता था, काम कॉलेज में पढ़ाई करता था, तो उसका एक स्वभाव था, उसका स्वभाव था दादागिरी करना, बॉसिंग। लेकिन धीरे धीरे भक्ति में आ गया। भक्ति में आने के बाद उसने सोचा कि ये भक्ति भक्त लोग बहुत अच्छे होते, यहाँ पे कोई अपोजिशन नहीं है, बाहर की दुनिया में अपोजिशन बहुत है, तो वहाँ पे मैं बॉस नहीं बन सकता, बॉस मैं यहाँ पे बन सकता हूँ। तो इसलिए वो भक्ति मार्ग में आया था ताकि यहाँ पर दादागिरी कर सके। तो अपनी पुरानी प्रवृत्ति छोड़ना नहीं चाहते लोग, उन्हें लगता है कि यहाँ पर और अच्छा चांस मिलेगा इंद्र तृप्ति करने का। इसलिए कभी कभी भक्ति में आने के बाद भी पुरानी प्रवृत्ति न छोड़ पाने के कारण लोगों को भक्ति में तकलीफें आती हैं। और ये पुरानी प्रवृत्तियां कई प्रकार की हो सकती है, कई प्रकार की। किसी को मतलब झूठ बोलने की प्रवृत्ति भी होती है किसी की, किसी को मतलब परेशान करने की, इंद्रिय तृप्ति करने की। ये सारी चीजें कभी कभी कुछ लोग भक्तिमय जीवन में भी लेकर आते हैं। जैसे बाहर कंपनी में झूठ बोलकर बॉस को टोपी लगाते थे, भक्ति में आने के बाद भी वही चीज अपने वरिष्ठ भक्तों के साथ लोग करते हैं। तो जब ऐसी प्रवृत्ति बनी रहेगी तो आगे एक बार धोखा देंगे, दो बार धोखा देंगे, तीसरी बार भगवंत ही फटके लगा के भगा देंगे उसको। और फिर बाद में लोग बोलते हैं, अरे पहले तो बहुत अच्छा भक्ति करता था, आजकल दिखाई नहीं देता, किधर गया ये। तो शुरू शुरू में लोग भक्ति करने आते हैं, लेकिन आने के बाद कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग निकल जाते हैं। तो निकल क्यों जाते हैं? क्योंकि पुरानी जो प्रवृत्ति है, वो पुरानी प्रवृत्ति उसके भक्ति मार्ग में बाधा बनती है। तो फिर आपको सोचना, फिर आप सोचेंगे वो निकल नहीं जाने चाहिए, उधर ही रहने चाहिए। लेकिन निकल जाना जो है वो भी भगवान की कृपा ही है। अगर वो भक्ति मार्ग से निकल नहीं जाएंगे, मतलब भक्ति का विनाश तो नहीं होता, भक्ति नष्ट नहीं होती, ऑफकोर्स भक्ति खुंठित हो जाती है, अटक जाती है, लेकिन अगर भगवान इस प्रकार से उसको भक्ति मार्ग से नहीं हटाएंगे, और वैष्णव अपराध करने के कारण वो पूरी तरह से अपनी भक्ति को नष्ट कर देगा। इसलिए कभी कभी भगवान ही भक्तों को भक्तों के सानिध्य से हटा देते हैं ताकि और अधिक अपराध न कर सके। तो ये देखकर कुछ लोगों को लगेगा भगवान ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन ये भी भगवान की विशेष कृपा है। तो ये सब भगवान करते हैं विशेष कृपा के रूप में। तो हम फिर से एक बार वही देखना पसंद करेंगे कि भगवान भी अवतार लेते हैं या अवतरित होते हैं, वास्तविक तौर पे उनको ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या जरूरत है ऐसी जगह पर आने की जहां पर कोई उनका सम्मान न करे, जहां पर हर कोई व्यक्ति उनको गाली देता हो। श्यामानंद प्रभु का एक लेक्चर मैंने सुना था, और बहुत एक सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे किचन में हम जाते हैं तो कई सारी अनाज की बोरियां होती है, कई सारी चावल की बोरियां समझ लो, कई सारी। उसमें से कभी कभी चावल के कुछ दाने नीचे पड़े रहते हैं, हम उसको इतना महत्व नहीं देते, ऐसे पड़े रहते, कई बार ऐसे ही पड़े रहते वहां पर, एक दो दाने गिर गए तो कोई उसको महत्व नहीं देता। उसी प्रकार से ये पूरे जो भौतिक जगत है उसमें असंख्य ब्रह्मांड है, जिसकी तुलना अनाज में वो जो दाने हैं उसके, अनाज के बोरी में जो दाने हैं उसके तुलना की गई है। अगर भगवान ने सोच लिया कि जाने दो, ये जो चतुर्मुख वाले ब्रह्मा है इसके ब्रह्मांड में मैं जाता ही नहीं इस बार, बाकी बहुत सारे ब्रह्मांड है उसमें मैं अवतरित होकर लीला करता हूं, ये एक ब्रह्मांड में छोड़ देता हूं, ऐसा अगर भगवान ने सोच लिया तो क्या करेंगे फिर हम? असुरों के द्वारा हम परेशान हो जाएंगे, बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। तो भगवान आते हैं ये ये ऐसा नहीं कि उनको आना पड़ता है, उनको जॉब करना है, वो ऐसा नहीं है, उनको पगार नहीं मिलेगा तो, अगर नहीं आएगा तो ऐसा नहीं, वो आते हैं हमारे खातिर, ताकि हम जैसे बद्ध जीव जो इस जगत में परेशान हो रहे हैं वापस भगवान धाम जा सके। इसलिए बार बार वो आते हैं, बार बार वो प्रकट होते हैं, ताकि हमको लेके जा सके। कल्पना करें कि आप है और आपके साथ अगर कोई बुरा बर्ताव करे, अगर हमारे राधा मदन गोपाल प्रभु के साथ मैं बुरा बर्ताव करूं, तो राधा मदन गोपाल प्रभु अगली बार से मेरे पास नहीं आएंगे। बोले क्या ये वल्लभ के पास जाके क्या मतलब, हर बार मेरा अपमान करता है, मैं क्यों जाऊं उसके पास। सोचो कि इस जगत में कितने लोग नास्तिक है, हर बार भगवान का भगवान पे आरोप लगाते हैं, भगवान को बुरा भला कहते हैं। अगर किसी दिन भगवान ने सोच लिया जाने दो, मैं जाता ही नहीं यहां पर, मरने दो इनको, भुगत तो अपना परिणाम, तो हमारा क्या होगा। तो भगवान ये सब होने के बावजूद भी हमारे लिए इतनी कृपा करते हैं। एक छोटा सा बुकलेट आपने भी पढ़ा होगा मराठी में, एक लक्ष्यवेधी प्रकाशन का, मतलब पुणे का एक पब्लिकेशन है, उसमें लिखा है, एक स्टोरी सुंदर आती है कि एक गृहस्थ ब्राह्मण होता है जो अपने गृहस्थी के नियमों का बहुत अच्छी तरह से पालन करता है। गृहस्थी का एक नियम होता है कि जब तक कोई भूखा है तब तक वो अन्न ग्रहण नहीं करता। वो क्या करता है, घर के बाहर जाता है और पूछता है कोई भूखा है, ऐसे 3 बार बोलता है। अगर कोई आता है उसके पास तो पहले उसको खाना खिलाता है और बाद में जो बचा है वो स्वयं ग्रहण करता है। तो ये ब्राह्मण भी जो था ऐसी प्रकार से घर के बाहर जाकर आवाज देता था कि कोई यहाँ पे भूखा है तो यहाँ पे आ जाइए, खाना खाइए। और कोई आता था वहां पे गरीब भिखारी व्यक्ति, तो उनको खाना खिलाकर बहुत आनंद का अनुभव लेता था वो। और साथ ही साथ वो ये भी कहता था, प्रचार भी करता था जो खाना खाने आया, वो कहता कि देखो भगवान कितने दयालु है, भगवान कितने हमारा ध्यान रखते हैं कि हमें भूखा नहीं रहने देते, हमें इतना सब दे रहे हैं, अन्न धान सब कुछ खिला रहे हैं, हमें उनका उनका शुक्रिया करना चाहिए और उनका भक्ति करना चाहिए, ऐसा वो प्रकार से हर बार लोगों को बोलता था। तो एक बार ऐसे ही हुआ, एक भिखारी था वो आया उसके घर पे खाना खाने के लिए, और वो उसी प्रकार से प्रचार कर रहा था उस भिखारी को। भिखारी ने जैसे ही भगवान शब्द सुना वो इतना क्रोधित हो गया कि उसने प्लेट ऐसे बाहर बाजू में फेंक दी। वो देखिए मैं नास्तिक हूं, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता, और बहुत बुरा भला कह के गाली दे के निकल गया वहां से बिना खाए पिए। तो बेचारा ये जो ब्राह्मण था इतना उदास हो गया, बोले कि कैसे व्यक्ति को मैंने खाना खिलाया, ये तो भगवान का गुणगान तो छोड़ो, इसको भगवान को बहुत बुरी बुरी गाली देकर गया, अगली बार से मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल घर पे नहीं बुलाऊंगा। और दुख व्यक्त कर रहा था, भगवान से प्रार्थना कर रहा था, उतने में स्वयं भगवान नारायण वहां पे प्रकट होते हैं और उस ब्राह्मण को सांत्वना देते, कहते हैं कि सोचो तुमने एक व्यक्ति का ये बात सुनकर तुमको इतना बुरा लगा, मुझे कितने लोग गाली देते हैं, मुझे कितने बुरा लगना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं उनको सूर्य प्रकाश देता हूँ, अन्न धान्य खिलाता हूँ, पानी देता हूँ, सब कुछ प्रोवाइड करता हूँ। अगर मैं भी आपके जैसा अपना कर्तव्य छोड़ दूंगा तो ये दुनिया का क्या होगा, इसलिए तुम भी अपनी सेवा मत छोड़ो, तुम जो कर रहे हो वैसे ही करते रहो और भक्ति प्रचार करते रहो। तो इससे इस स्टोरी बहुत सिंपल सी है, लेकिन सीखने जैसा बहुत कुछ है यहाँ पर, कि भगवान की विशेष दया है, अनुकंपा है, हमारी कोई योग्यता है ही नहीं, भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं, इसी को तो कृपा कहते हैं। कृपा का अर्थ ही होता है कि कोई योग्यता नहीं है लेकिन फिर भी हमारे मदद हो रही है, इसी को कृपा कहते हैं। तो भगवान कृपालु है, वो दया निधि है, इस वजह से हम बचे हुए हैं, नहीं तो हमारा कब का बैंड बच जाता। तो इसलिए भगवान अनंत शेष को गलत मत समझिए जब वे सब कुछ विनाश करते हैं, विनाश करना ये भगवान का एक और कृपा का लक्षण है, ये हमें समझना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा। आशा कर तो सबको समझ में आ गया होगा, किसी का कोई प्रश्न नहीं होगा, नहीं है ना? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद साधु। यस योर कमेंट्स प्रभु।